नमस्कार और ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो एक साथ कई नकाब पहनता है।
हाँ, नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ टाइम और लेखिका है कालियान ब्रैडली।
और ब्रैडली का जो ब्रिटिश कंबोडियन बैकग्राउंड है वो कहानी में एक बहुत ही गहरी परत जोड़ता है।
बिल्कुल, जब हम इस उपन्यास के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में साइंस फिक्शन आता है।
सही।
लेकिन ये कहानी सिर्फ टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं है।
नहीं,
ये एक दफ्तर की कॉमेडी है, एक जासूसी थ्रिलर है और इन सब के दिल में एक बहुत ही अनोखी प्रेम कहानी है।
इसका जो मूल आधार है वो ही इतना मजेदार है।
बिल्कुल।
सोचिए, एक सरकारी मंत्रालय,
हाँ,
जिसका काम है इतिहास के अलग अलग दौर से लोगों को आज की दुनिया में लाना, और इन मेहमानों को वो कहते हैं एक्सपैट्स।
और यही पर कहानी का असली व्यंग शुरू होता है।
मतलब समय यात्रा जैसी दिमाग चकरा देने वाली खोज।
हाँ, जब सरकारी बागुओं के हाथ लगती है तो वो बन जाती है सिर्फ फाइलें, फॉर्म्स और ढेर सारी कागजी कार्रवाई।
हाँ हाँ, जैसा कि किताब में कहा भी गया है, समय यात्रा जैसा कि पता चला ज्यादातर कागजी काम है।
बिल्कुल।
अरे, ये तो हर बड़े ऑफिस की कहानी है। तो चलिए इस अजीबोगरीब मंत्रालय के गलियारों में झांकते हैं। कहानी हमें कहाँ ले जाती है?
तो कहानी हमें ले जाती है लंदन, लेकिन आज का लंदन नहीं बल्कि भविष्य का।
अच्छा,
यहाँ सरकार चोरी छिपे एक मंत्रालय चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टाइम। उनका मकसद है इतिहास के उन लोगों को बचाना जो अपनी मौत के कगार पर थे।
सुनने में तो ये किसी अकादमिक प्रोजेक्ट जैसा लगता है। और हमारे एक मुख्य पात्र इसमें कैसे फिट होते हैं?
हमारी कहानी की जो कथावाचक है वो इसी मंत्रालय में एक सिविल सर्वेंट है। वो ब्रिटिश कैम्बोडियन है और अपनी जिंदगी में एक तरह का अकेलापन महसूस करती है।
जैसे वो दो संस्कृतियों के बीच कहीं फंसी हुई है।
बिल्कुल। और उसका काम है ब्रिज का, मतलब इन एक्सपैट्स को 21वीं सदी के तौर तरीके सिखाना।
और उसे जिम्मेदारी मिलती है कमांडर ग्राहम गोर की। ये नाम तो असली है ना?
हाँ बिल्कुल। कमांडर गोर एक असली ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन के साथ आर्कटिक की बर्फ में खो गए थे।
ओह,
मंत्रालय उन्हें उनकी मौत से ठीक पहले 1847 से आज के लंदन में ले आता है।
अब सोचिए, 19वीं सदी का एक विक्टोरियन जेंटलमैन
हाँ,
जो अचानक स्मार्टफोन, इंटरनेट और इंडोर प्लंबिंग की दुनिया में आ गिरा है।
जबरदस्त सांस्कृतिक टकराव है।
एक तरफ है कथावाचक जो सांस्कृतिक रूप से विस्थापित महसूस करती है, और दूसरी तरफ है गोर जो सचमुच समय में ही विस्थापित हो चुका है।
और यहीं से उपन्यास का असली दांव शुरू होता है। मंत्रालय का सबसे सख्त नियम है
क्या?
कि एक्सपैट के साथ किसी भी तरह का कोई भी रोमांटिक रिश्ता नहीं बनाना।
एक मिनट, सबसे बड़ा नियम है कि रोमांटिक रिश्ता नहीं बनाना?
हाँ
और फिर विन दोनों को एक ही सरकारी फ्लैट में साथ रहने को कह देते हैं।
बिल्कुल, ये तो जानबूझकर मुसीबत को दावत देने जैसा लगता है। यहीं से शक होना शुरू हो जाता है।
सही। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद है?
उनकी शुरुआती बातचीत तो बड़ी मजेदार है। कथावाचक गौर को स्पॉटिफाई से लेकर
हाँ,
ब्रिटिश साम्राज्य के पतन तक सब कुछ समझाने की कोशिश करती है।
मैं सोच सकता हूँ गौर के लिए ये सब कितना अजीब होगा। एक ऐसा साम्राज्य जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो अब
इतिहास की किताबों का हिस्सा है।
लेकिन ये रिश्ता सिर्फ मजाक तक तो सीमित नहीं रहता होगा ना?
नहीं, धीरे धीरे उनकी बौद्धिक बहसें और एक दूसरे के अकेलेपन को समझने की कोशिश एक गहरे, अनकहे और वर्जित प्रेम में बदल जाती है।
क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में अजनबी हैं।
और इसी साझा अकेलेपन में उन्हें एक दूसरे का सहारा मिलता है। उपन्यास में एक जगह कथावाचक को एहसास होता है, हम दोनों अजनबी थे जो एक ऐसी जगह को समझने की कोशिश कर रहे थे जो पूरी तरह से हम में से किसी की नहीं थी।
वाह, मतलब समय में विस्थापन और सांस्कृतिक विस्थापन दोनों एक ही तरह का अकेलापन पैदा करते हैं।
बहुत खूबसूरती से कहा आपने। लेकिन ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। उन पर 24 घंटे मंत्रालय की नजर है, कैमरे, रिकॉर्डिंग, सब कुछ।
तो ये रोमांस एक सरकारी साजिश के साए में पनप रहा है। यहीं से कहानी का थ्रिलर वाला पहलू उभरता होगा।
हाँ, क्योंकि जैसे जैसे कथावाचक गोर के करीब आती है उसे मंत्रालय के इरादों पर शक होने लगता है।
वो जो प्रोनोक्लाज्म वाली कहानी बताते हैं।
हाँ, कि वो किसी लौकिक खतरे को रोक रहे हैं, लेकिन उनकी कहानियों में झोल नजर आने लगता है। उसे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक है जो उसे छिपाया जा रहा है।
और दूसरे एक्सपर्ट्स का क्या, उनका अनुभव कैसा?
बहुत अलग। जैसे कैप्टन जॉन है, जो इस नई दुनिया से तालमेल नहीं बिठा पाता, वो कड़वाहट और गुस्से से भर जाता है।
तो ये हमें दिखाता है कि समय का ये घाव हर कोई नहीं भर सकता।
बिल्कुल।
तो एक तरफ कथावाचक का भावनात्मक विकास हो रहा है, वो एक उदासीन सरकारी कर्मचारी से एक साहसी महिला बन रही है, और दूसरी तरफ रहस्य गहरा रहा है। तो कहानी का मोड़ कैसे आता है?
ये मोड़ तब आता है जब कथावाचक अपनी निजी जासूसी शुरू करती है। वो मंत्रालय के सर्वर हैक करती है, गोपनीय फाइलें पढ़ती है,
और सच सामने आता है।
हाँ, और जो सच उसके सामने आता है वो दिल दहला देने वाला है।
क्या है वो सच? मंत्रालय का असली मकसद क्या है?
सच ये है कि मंत्रालय भविष्य में आने वाली एक भयानक जलवायु प्रलय की तैयारी कर रहा है।
क्या?
और एक्सपर्ट्स को यूं ही नहीं चुना गया था, उन्हें उनकी एक खास क्षमता के लिए चुना गया था, चरम प्रतिकूल और खतरनाक वातावरण में जिंदा रहने की क्षमता।
जैसे आर्कटिक की बर्फ में गौर का अनुभव।
वो मानव परीक्षण के विषय हैं।
मतलब कोयले की खान में कनारी पक्षी की तरह।
बिल्कुल। मंत्रालय यह देख रहा है कि ये लोग इस नई तनावपूर्ण दुनिया में कैसे ढलते हैं और उनके डेटा का इस्तेमाल मानवता के कुछ चुनिंदा अमीर लोगों के लिए भविष्य में जीवित रहने की रणनीति बनाने के लिए किया जा रहा है।
हाँ,
ये तो बहुत ही क्रूर है।
तो ये कोई ऐतिहासिक संरक्षण नहीं है, ये तो अस्थाई उपनिवेशवाद है।
बिल्कुल सही शब्द है।
मंत्रालय अतीत से लोगों को वैसे ही निकाल रहा है जैसे औपनिवेशिक शक्तियां दूसरे देशों से संसाधन निकालती थीं।
यही उपन्यास का सबसे शक्तिशाली विचार है। मंत्रालय का मिशन अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य के लिए उसका बेरहमी से शोषण करना है।
और ये रहस्य उद्घाटन तो सब कुछ बदल देता होगा।
सब कुछ।
कथावाचक और गोर के सामने अब क्या विकल्प बचता है?
उनके सामने एक असंभव चुनाव है। या तो मंत्रालय के साथ रहो, एक ऐसे भविष्य में जो नैतिक रूप से दिवालिया लेकिन शायद सुरक्षित हो,
या फिर
विद्रोहियों के साथ हो जाओ और एक अनिश्चित खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ो।
और मंत्रालय की बॉस मैगी कैंबल, वो इस सबको कैसे सही ठहराती होगी?
मैगी एक बहुत जटिल पात्र है। उसका तर्क है कि अगर पूरी मानवता को बचाने का मौका हो तो क्या कुछ लोगों की बलि देना सही नहीं है?
यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला, लेकिन इस भले की परिभाषा कौन तय करेगा और उसकी कीमत कौन चुकाएगा?
यही सवाल कहानी पूछती है।
तो अंत में वे क्या चुनते हैं?
वे विद्रोह चुनते हैं।
और अंत कैसा है? कोई आसान जीत?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उपन्यास का अंत बहुत मार्मिक और भावनात्मक रूप से जटिल है। वे मंत्रालय के चंगुल से बच निकलते हैं, लेकिन उनकी आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत है।
मतलब उनका भविष्य अनिश्चित है?
हाँ, वे हमेशा भागते रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस अराजक दुनिया में अपना एक छोटा सा कोना बनाने के लिए एक दूसरे को चुना है।
तो ये अंत इस बात पर जोर देता है कि बड़ी अमानवीय व्यवस्थाओं के सामने व्यक्तिगत प्रेम और मानवीय संबंध
वो चीजें हैं जो हमें बचाए रखती हैं।
लेकिन ये उपन्यास सिर्फ प्रेम या साजिश के बारे में नहीं है, इसमें इतिहास और स्मृति को लेकर भी बहुत गहरे विचार हैं।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रालय इतिहास को सिर्फ डेटा की तरह देखता है, तथ्य, तारीखें, आंकड़े।
लेकिन गौर के लिए?
गौर के लिए इतिहास एक जीवित दर्दनाक हकीकत है। वो अपने साथियों की मौत का दर्द, अपनी खोई हुई दुनिया का शोक हर रोज जीता है।
उपन्यास में एक बहुत शक्तिशाली रूपक है।
अतीत एक विदेशी देश नहीं है, ये एक शरणार्थी शिविर है।
वाह, ये पंक्ति तो हिला कर रख देती है।
ये बताती है कि अतीत से विस्थापित लोग कितने असुरक्षित होते हैं, चाहे वो समय में विस्थापित हों या जगह में।
और यही लेखिका की सबसे बड़ी खूबी है, वो इतने सारे धागों को एक साथ कैसे बुन लेती हैं।
इसका एक बड़ा कारण है कहानी का प्रथम पुरुष कथन। हम सब कुछ कथावाचक की नजरों से देखते हैं।
उसकी मजाकिया, व्यंग्यात्मक और हमेशा आत्मनिरीक्षण करने वाली आवाज ही कहानी की रीढ़ है।
हाँ, हम उसके डर, उसके शक और उसके प्यार को सीधे महसूस करते हैं।
और ब्रैडली बिम यानी इमेजरी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं।
बिल्कुल। एक तरफ मंत्रालय का ठंडा, रोगानुरहित वातावरण है और दूसरी तरफ कथावाचक और गौर के छोटे से फ्लैट का गर्मजोशी भरा माहौल।
और आर्कटिक का बिंब, वो बार बार लौट कर आता है।
हाँ, आर्कटिक की बर्फ, गौर के अंदरूनी आघात और उसकी जबरदस्त सहनशीलता दोनों का प्रतीक बन जाता है। इसी तरह गौर की 19वीं सदी की चीजें,
जैसे उसकी वर्दी या पॉकेट घड़ी।
हाँ, वो सिर्फ चीजें नहीं है, वे उसकी खोई हुई पहचान और दुनिया का प्रतीक है।
ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव रचता है जो एक ही पल में आपको हंसा सकता है और अगले ही पल
आपकी आंखों में आंसू ला सकता है, या आपको किसी गहरी साजिश के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है।
और यह हमें दिखाता है कि जीवन भी तो ऐसा ही है। हमारी अपनी जिंदगी में भी तो कॉमेडी, त्रासदी और रहस्य एक साथ चलते रहते हैं।
ब्रैडली ने बस इसे समय यात्रा की एक अनोखी कहानी के कैनवास पर उतार दिया है।
अंततः यह कहानी बताती है कि विशाल अव्यक्तिक व्यवस्थाओं और ऐतिहासिक ताकतों की दुनिया में
सबसे साहसी और क्रांतिकारी कार्य शायद किसी दूसरे इंसान से जुड़ना और सभी मुश्किलों के बावजूद प्रेम को चुनना ही है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।